ॐ नमो भगवते श्रीमद् भगवद गीता नवा अध्याय और चौदवां श्लोक। सततम् कीर्तयन्तु माम यतनश्च यतनश्च पे ध्यान दीजिएगा। दृढ़व्रतः नमस्यतंश्च माम भक्त्या नित्ययुक्त पवास्ते। नमस्यन्तश्च मुझको ही नमस्कार करते हैं, अर्थात मेरी ही पूजा करते हैं। नित्य युक्त उपासते, जो हमेशा मेरी उपासना करते रहते हैं। किसके द्वारा? सततम। मैं थोड़ा इस श्लोक को आज उल्टा पढ़ रहा हूं। सततम कीर्तयन्तो, जो सतत कीर्तन करते रहते हैं, अर्थात जो सदैव या तो कृष्ण के विषय बोलते हैं, या तो कृष्ण के विषय गाते हैं, या कृष्ण के विषय कुछ करते हैं, या कृष्ण के विषय सोचते हैं, इसे कहते हैं नित्य कीर्तन करना। या तो कृष्ण के विषय कुछ बोलिए, या कृष्ण के विषय कुछ सुनिए, या कृष्ण के विषय कुछ कीजिए, या कृष्ण के विषय कुछ सोचिए, या फिर कृष्ण के विषय गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहनों मित्रों, महापुरुषों ने कहा है और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि दुर्लभ मानव देही, क्या कहा? दुर्लभ मानव देही। ये जो मानव देह है ये अत्यंत दुर्लभ है। और ये स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी न मिलेगी फिर दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी फिर दोबारा का मतलब क्या हुआ? कि ये मनुष्य जीवन फिर कभी नहीं मिलेगा। इसी बात को संत कबीर ने कहा, मनुष्य जन्म की मौजिए मिले ना बारंबार, ये मनुष्य जीवन कभी मिलने वाला फिर से है ही नहीं। इसीलिए कहा कि जो महात्मा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए कैसे करते हैं? दृढ़ संकल्प। क्योंकि ये जो संसार है ना, अनिश्चित है। हम अभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि शाम को हमारे साथ क्या होने वाला है। हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि अपने साथ या अपनों के साथ कल क्या होने वाला, कोई कह नहीं सकता। आने वाला हमें हंसाएगा या रुलाएगा, हंसाएगा या रुलाएगा हम कह नहीं सकते। जिस बहू को हम घर पे ला रहे हैं वो हमें सुख देगी या दुख देगी इसकी गारंटी कोई नहीं कह सकते। जिस जमाई को हम बेटी दे रहे हैं वो उसे सुखी रखेगा या दुखी रहेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हम पढ़ लिख कर जो बहुत बड़ी डिग्री लेते हैं, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम पढ़ लिख कर जो बहुत बड़ी डिग्री लेते हैं, बहुत बड़ी डिग्री, वो डिग्री भी हमें सुख देगी या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम पता है वो कब बनता है, जब कोई क्या करता है पता है, IAS की डिग्री, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की डिग्री करता है ना, तब उसे ये डीएम की नौकरी मिलती है। और आपको पता है ये हजारों हजारों में से कोई 2-3 पास होते हैं। क्या बोल रहा हूं, हजारों हजारों में से कोई 2-3 ये रेशियो निकलता है। और वो कितना इंटेलिजेंट होगा कि पूरे इंडिया में 14वें नंबर पे आया, 14th नंबर पे रैंक पे आया, बिहार में, और कल एक ट्रेन के नीचे सुसाइड कर लिया। कितनी बड़ी डिग्री, और कहते हैं उनके इर्द गिर्द वाले कि बहुत कड़क ईमानदार ऑफिसर और बहुत समझदार, और सुसाइड नोट में लिखा मैं खुद जिम्मेदार हूं, मेरी मृत्यु का और कोई जिम्मेदार नहीं। कौन सा दुख हो गया? बहनों मैं समझा रहा हूं आप सबों को मित्रों कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन का कोई उद्देश्य अगर है तो सब का सब अंत में कभी ना कभी दुख देने वाले हैं। इतना बड़ा सिविल सर्विस का आदमी, इतना बड़ा ऑफिसर जिसके लिए लोग सपने भी नहीं देख पाते, इस डिग्री के लिए लोग सपने, पता है कितने एग्जाम होते हैं, कितनी कठोर परीक्षाएं होती तब जाके उसमें कोई पास होता, और इतना बुद्धिशाली व्यक्ति भी कब सुसाइड किया होगा, जब हद से ज्यादा उसको दुख हुआ होगा। फिर बहुत ज्यादा धन, मैं समझा रहा हूं कृष्ण भक्ति में ही जीवन का सर्व उत्तम कल्याण है, इसलिए अपने संकल्प को कभी हिलने मत देना। जो आज संकल्प किया है कि हम कृष्ण भजन करेंगे, जो आज संकल्प किया है कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, वह संकल्प आपका अंत तक होना चाहिए। फिर हम सोचते हैं पैसे, क्या हो, पैसे हो, पैसे 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 और पैसे। आपने हमारे देश में एक ब्रांड का नाम जरूर सुना होगा, जिस ब्रांड का नाम है रेमंड, नाम सुना जी, रेमंड का नाम सुना है, और वो दूसरा ये भी बनाते हैं परफ्यूम और बहुत सारी चीजें, पार्क एवेन्यू के नाम से आई थिंक, और कलर 21 भी आई थिंक उन्हीं की ब्रांच है कपड़ों की, आज कितना बड़ा नाम है। उसके मालिक के पास पता है कितना पैसा है, 12 करोड़ नहीं, 1200 करोड़ नहीं, 12000 करोड़। कितने, 12000 करोड़। इतना शौकीन आदमी एडवेंचर का कि एक समय वो इंग्लैंड से जहाज अकेला उड़ा के इंडिया आ गया, इतना एडवेंचर, देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं। एयर बलून देखा है जो गैस बलून जिसमें वो उड़ते हैं लोग, वो भी 60 की एज में उड़ा, इतना एडवेंचर। अचानक विचार आया, मेरे बेटे के नाम ये सारा धन करूं, मेरा बेटा खुश होगा। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। और उसका घर पता है, ये जो मुकेश अंबानी का घर है ना, उससे भी 3-4 फ्लोर ऊंचा है। कृष्ण भक्ति नहीं की ने अंत में बहुत नुकसान में जाएंगे सब के सब, सब के सब। तब अचानक अपने 12,000 करोड़ का अंपायर अपने बेटे के नाम कर दिया। बेटे ने पता क्या किया, घर से उसको निकाल दिया। जिसके पास कितने हैं, ये न्यूज तो आप सबों तक भी मेरे ख्याल पहुंच चुकी होगी। घर से उसको निकाल दिया, इवन उसका जो इतना बड़ा घर है उसमें उसको रहने तक भी नहीं दिया जा रहा है। और उस समय, इस समय वो व्यक्ति भाड़े के घर में रह रहा है। किसके घर में? भाड़े के घर में, और पैदल चल रहा है। कार भी उससे छीन ली है, जिसके पास पता नहीं कितनी कारें होंगी और करोड़ों की कारें होंगी। आज उसके पास कार भी नहीं है, इस समय उसकी उम्र है 68 ईयर ओल्ड। वो बेचारा एक थैला लेके बॉम्बे में पैदल घूम रहा है। अपने बेटे से कहता है कम से कम कुछ खर्चा ही मुझे दे दो महीने का, वो भी देने को तैयार नहीं। इसकी पूरी पूरी की पूरी न्यूज शायद कल टीवी में भी आई थी और आज न्यूज़पेपरों में भी आई है। रेमंड, जिसके शोरूम ही देख के आदमी पागल हो जाता, जिसके कपड़े पहन के आदमी प्राउड करता, मैंने रेमंड का सूट पहना है। खाली हाथ हो गया, अब वो कोर्ट में जाएगा, कचहरी में जाएगा, 68 बरस की उम्र में पता नहीं ऐसे ही क्या होगा। अगर उससे आधा समय, उससे भी आधा समय किसी मनुष्य ने अगर कृष्ण भक्ति की हो तो अंत तो संवरेगा। एक उम्मीद तो होगी कि चलो संसार वालों ने तो साथ नहीं दिया, मेरा श्याम सुंदर तो मेरा साथ देगा। लेकिन कब? जब उससे बना के रखा होगा तब। लोग कहते हैं हमारे घर बेटे हो, लो बेटे हुए। आज वो जरूर सोचता होगा कि ऐसी औलाद न होती तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसी औलाद न होती तो ज्यादा अच्छा होता। समझाने की बात यह है कि यदि हम कहीं कृष्ण भक्ति से चूक गए तो संसार तो हाथ में रहने वाला कभी है ही नहीं। इसीलिए संत कबीर जी ने एक बहुत अद्भुत बात कही जो बहुत दिल को लगती है। वो कहते हैं जीवन, जीवन मतलब शरीर की शक्ति हमेशा रहने वाली नहीं है। ये जो आज हमारी माताएं कुर्सियों पर बैठी हैं, जो आज चलने फिरने में उनको तकलीफ है, ये आप ही की तरह कल दौड़ती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता होगा कि लिफ्ट से पहले सीढ़ियों पर भाग के चढ़ जाते होंगे, लेकिन आज उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया है। आप ही से ज्यादा कोई सुंदर स्त्री भी होगी इन माताओं में, लेकिन आज उनके रूप रंग ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। जीवन, यौवन, राजमत, ये तीन चीजें हमेशा नहीं रह सकती है। एक आपके शरीर की शक्ति हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है, ना आपके नक्श, ना आपके फीचर, ना आपके फिगर, ना आपका शरीर हमेशा कभी एक जैसा नहीं रह सकता है। अगर मेरी बात पे भरोसा आपको कम आ रहा है तो नेट पे जाइए, पहले की बहुत सुंदर हीरोइनें उनके आज का जो शरीर है आप देख के खुद समझ जाएंगे। जीवन, यौवन, राजमद, पैसों का नशा भी कभी हमेशा नहीं रह सकता है, वो हमने इनसे सुन लिया अभी ये रेमंड की कथा। अभी चल रहा ना कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन को फल सोई। जो जो दिन आप सत्संग गए, जैसे मैंने कल ही आपको कहा था कि जब हम कहते हैं कृष्ण, तो वो हमारे जीवन का सबसे अनमोल क्षण होता, जब हमारे मुंह से निकल जाए ना कृष्ण 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 कृष्ण, हमारी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ अनमोल पल है वो, वो पल जो हमें धन्य कर देगा, धन्य कर देगा। तो बहनों, मातों, मित्रों, ये तो हमने देख लिया कि अगर बहुत बड़ी डिग्री और बहुत बड़ी नौकरी से किसी को सुख मिलता तो ये डीएम कभी सुसाइड ना करते हैं। पता है डीएम की कितनी बड़ी पोस्ट होती, आप कल्पना से परे, उसका कितना वट होता है, कितना रोब दबदबा होता है, आपको नहीं पता है। अगर बहुत धन से किसी को सुख मिलता तो ये रेमंड के मालिक आज बेघर न होते। औलाद से सुख मिलता तो आज इनका बेटा इनको घर से नहीं निकालता। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए जो महात्मा है, और एक बात याद रखना, महात्मा कोई शक्ल सूरत से महात्मा नहीं होते हैं, अपने आचरण से महात्मा होते हैं। कोई कपड़े पहनने से महात्मा नहीं बनते, अपने आचरण से महात्मा बनते हैं, अपने बोलचाल से महात्मा बनते हैं, अपने विचार आचार से महात्मा बनते हैं। और वो कोई स्त्री भी बन सकती है, कोई पुरुष भी बन सकता है, कोई पढ़ा लिखा भी बन सकता है, कोई अनपढ़ भी बन सकता है, किसी कास्ट का, किसी भाषा का कोई भी महात्मा बन सकता है। महात्मा के लिए किसी रबड़ स्टैंप की जरूरत नहीं है या किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। यहां पर महात्मा का ये पूरा पहला लक्षण है जो सदैव श्री कृष्ण की महिमा गाता रहता है, सदैव श्री कृष्ण की महिमा करता रहता है दृढ़ संकल्प के साथ। तो दृढ़ संकल्प अब कैसे बने? अब ये दृढ़ संकल्प किसी मार्केट में तो मिलता नहीं कि चलो 500 रुपए का ले आए और हो गए दृढ़ संकल्प वाले। कोई 2000 रुपए का मिलता नहीं है कि लेकर आई, या कहीं मैन्युफैक्चरर नहीं होता है। दृढ़ संकल्प होता है उन लोगों का संग करने से जिनका स्वयं दृढ़ संकल्प है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो अगर ये नेगेटिव हो सकता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं? उन लोगों के संग रहने से, उन लोगों का संग करने से, उन महात्माओं का संग करने से, उन संतों की वाणी सुनने से, उन संतों के विचार सुनने से, उन संतों का संग करने से जिनका संकल्प पहले ही दृढ़ है। अगर श्रील प्रभुपाद जी महाराज न होते तो आज क्या इतने बड़े बड़े और महापुरुष होते? कभी नहीं होते। संतों का संग करने से ही जी दृढ़ संकल्प होता है। या दूसरे शब्दों में वो महापुरुष अपने वचनामृत से हमारा दृढ़ संकल्प कर देते हैं, कच्चे को भी जी पक्का कर देते हैं। कैसे? एक उदाहरण देता हूं, सीमेंट अगर फूंक मारो तो बोलो ने उड़ जाए, सीमेंट अगर यूं हथेली में लो और फूंक मारो तो उड़ जाए, इतनी कमजोर पाउडर। लेकिन जैसे ही पानी का संग मिलता है वो चट्टान जैसी मजबूत हो जाएगी, है ना? मानते हो ये समझ में आ रहा है? सीमेंट जो पाउडर है फूंक मारो तो भी उड़ जाए, लेकिन जल पानी का जब संग किया तो चट्टान के जैसे मजबूत हो गई। ऐसे ही हो सकता है शिष्य कमजोर हो, लेकिन जब सतगुरु का संग मिला, जब सतगुरु का संग मिला तो वो भी उस चट्टान की तरह मजबूत हो गया। मीरा एक कमजोर सी स्त्री थी, आप जैसी स्त्री थी, आप जैसी ही कन्या थी, आप जैसी ही स्त्री थी, लेकिन जब रविदास महाराज जी का संग मिला मीरा कहां से कहां पहुंच गई। उनके सदगुरु ने ऐसा उनको रंग दिया कि मीरा चट्टान की तरह मजबूत हो गई। और पुरुषों की सभा में जब मीरा को बुलाया गया और मीरा को कहा कि मीरा तुमने दुस्साहस किया है, तुम्हें पता है इसकी क्या दंड हो सकता है, तब मीरा ने कहा जानती हूं, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे मौत दे सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चूंकि मीरा को पता था अगर मर भी गई तो जाऊंगी तो अपने गिरधर के पास। याद रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, अगर आप अकेले हो, क्या कह रहा हूं, अगर आप अकेले हो लेकिन सही गाड़ी में बैठे हो, सही एड्रेस पता हो और चलाने वाले पे भी पूरा विश्वास हो तो सफर का डर लगता नहीं है, अकेले ही सही लेकिन पता है कि घर पहुंच जाएंगे। लेकिन पूरी भीड़ हो और भटक गई हो, क्या कहा? पूरी भीड़ और भटक गई हो तो भटकते ही रहेंगे। आज भीड़ तो है लेकिन भीड़ कौन सी है? भटकी हुई भीड़ है अपने लक्ष्य की ओर से। आप भले ही देखने में अकेले हो लेकिन लक्ष्य की ओर जा रहे हो, जिस लक्ष्य का नाम है कृष्ण, उस लक्ष्य का नाम कृष्ण। इसलिए यह कहा जो महात्मा है उनका संकल्प कैसा होता है जी? दृढ़ संकल्प होता, दृढ़ संकल्प होता। जब आपकी सेवा हो या साधना हो तो उसमें क्या होना चाहिए? आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए। याद रखो मेरी माताओं बहनों मित्रों, एक बात समझ लो, न मतलब नहीं, न न न भक्ति करने के, न भजन करने के, न सत्संग करने के 99 बहाने हैं। कितने? 99, 99। और ये सब करने के लिए, अर्थात सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, भक्ति करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है और वो दृढ़ संकल्प। और यहां गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट करता है, यतनश्च मतलब यतन करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे? उनका संकल्प दृढ़ होता है। संकल्प, चाहे वो सेवा का संकल्प हो, साधना का संकल्प हो, भजन का संकल्प हो, लेकिन कैसा हो? दृढ़ संकल्प। बहनों, ना हटना ना बटना, बस चले जाना अपने लक्ष्य की ओर, भजन करते हुए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नाम तेरे संग सहाय, ये नाम आपका सहाय होता रहेगा। बहनों, माताओं, मित्रों, हमारे जीवन में वैसे तो न जाने कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी होती है जो हमारे जीवन को पूरा बदल के रख देती है, और वो होते हैं हमारे गुरुदेव, जो हमारे पूरे जीवन की दिशा भी बदल देते हैं और दशा भी बदल देते हैं। दिशा और दशा दोनों बदल दें, वही हमारे सद्गुरु होते हैं, जो अंधेरे से एकदम उजाले की ओर ले आए। फिर इन्होंने सोचा कि मुझे अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिन सेविया तीन पायामान, बिना सेवा साधना पक्की हो नहीं सकती है, क्योंकि सेवा ही है। एक बात याद रखना, सेवा और साधना क्यों साथ साथ, समझाऊं? क्योंकि साधना करते 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 अभिमान आने लगता है कभी, और वो सेवा उस अभिमान को तोड़ती रहती है। समझ में आई बात? इसलिए सेवा और सेवा, साधना और सिमरन। साधना को बढ़ाने वाला कौन है, बोलो? साधना को बढ़ाने वाला सिमरन है, और साधना को बचाने वाला सेवा है। भाई समझो, साधना को बढ़ाने वाले क्या है? सिमरन। और उसको बचाने वाले सेवा। क्योंकि जब जब हम सेवा करते हैं, तब तब हमारा अभिमान टूटता जाता है। इसीलिए कहा जिन सेविया तीन पाया मान। एक बात बताऊं, कभी कभी हम संसार में अपनों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी सोचते, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, तूने कुछ बात की? मैं क्या बात करूं, कुछ है ही नहीं बात करने का, है कि नहीं? ऐसा कभी कभी नहीं होता? कभी कभी हम अपने घर में ही, अपने हस्बैंड से भी या अपनी वाइफ से भी हम चुप हो जाते कि क्या बात करें कुछ करने को, और यहां तो सोचते कि करो करो, करने को सब कुछ है, क्योंकि कृष्ण कथा एक अमृत की धारा है जो नित्य बहती रहती है, उसके लिए समय कम पड़ जाता है। सोचो, जब कथा के लिए समय कम पड़ने लगे तो समय गुजरने का मतलब एहसास भी नहीं हुआ। और मैं यही चाहता हूं, भक्ति करते करते, भजन करते करते कब मृत्यु आ गई उसका पता भी नहीं चला। पता कब चला? तब जब घर पहुंच गए। तो सेवा, सिमरन और साधना। तो साधना को बढ़ाने वाला भजन, भजन करोगे तो वैसे वैसे है, क्योंकि भजन खुद में ही साधना है, और भजन खुद में ही प्रोटेक्शन है। तेषां सतत युक्तनाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन्माम। जैसे जैसे भजन करोगे बुद्धि निर्मल होती चली जाएगी। तो भजन साधना को बढ़ाने वाला कौन है? भजन, स्मरण, और उसको बचाने वाला सेवा। क्योंकि सेवा ही अहंकार को तोड़ती है, अहंकार को तोड़ने में सर्वश्रेष्ठ क्या साधन है? सेवा। इसलिए हनुमान जी महाराज, हनुमान क्या? हनुमान, हनुमान मतलब, देखो सुनो, मान मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, मान, हनन करना, मतलब नाश करना, हनन मतलब नाश करना, हनुमान मतलब जिसने अपने मान का नाश किया हो वो हनुमान है। यहां तो हमारी ये हालत है, अहंकार सर चढ़ पे बोलता है कि कभी गुरु महाराज भी कुछ कह ले तो बोले अकेले में नहीं बोल सकते, इतने सब लोगों के सामने डांटा, लोग क्या बोलेंगे। इतना मान हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, और जिसका मान का हनन हो गया हो, संत कबीर को उनके गुरुदेव ने सबों के सामने डांटा, न केवल डांटा बल्कि गुरु नामानंद जी ने अपनी चरण पादुकाएं उनको मारने लगे। तब कबीर ने कहा, गुरुदेव सुबह तो आपने अकेले में अपनी कृपा बरसाई थी, आज तो सब लोगों के सामने अपनी कृपा बरसा रहे हो मुझ पे। जिसने अपने मान का हनन किया वो हनुमान है। तो आप देखिए, हनुमान जी महाराज की साधना में कोई कमी नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, सेवा का। क्योंकि ये सेवा ही है जो हमारे अभिमान को तोड़ती है, सेवा ही है जो हमारे अभिमान को तोड़ती है। और यही सेवा, एक बात बताऊं, जहां मान का हनन किया वहां आपका मान बढ़ा, वाह। जहां आपने अपने मान का हनन किया वहां मान आपका बढ़ा, किसके नजर में, भगवान के नजर में, गुरु के नजर में, मान आपका बढ़ गया, मान बढ़ा आपका, मान बढ़ा आपका, बिल्कुल बढ़ा। एक दिन की बात है कि गुरु नानक देव जी महाराज, अपने पुत्रों के साथ, भाई लक्ष्मी चंद और बाबा श्री चंद अपने बेटों के साथ जा रहे थे किसी यात्रा पे। यात्रा पे जाते 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 गुरु महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज के पास एक कटोरा था, बहुत ही बहुमूल्य सुंदर, अति सुंदर कटोरा था। पता नहीं उन्होंने क्या लीला की कि रास्ते में एक ऐसा नाला आया जिसमें कीड़े थे, गंध था, विष्टा था, पूरा भरा पड़ा था, और किसी तरह से वो कटोरा उनके हाथ से छूट के उस कीचड़, उस विष्टा, उस गंध में जाके गिर पड़ा, जबकि साथ उनके बेटे भी थे। लेकिन मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, उनकी ओर कहा, लेकिन उन्होंने उस कटोरे को नहीं निकाला, क्योंकि याद रखना, किसी भी संत को उसका परिवार कभी समझ नहीं पाया, जो शिष्य समझे वो परिवार कभी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि परिवार के लिए मात्र पिता है, माता है, भाई है, पुत्र है, लेकिन शिष्य के लिए तो वो भगवान है, इसलिए वो समझ सकते हैं, परिवार नहीं समझ सकता। उनके दोनों पुत्र थे, लेकिन किसी ने भी उस कटोरे को निकालने को तैयारी नहीं की, मना कर दिया। तब उनका एक शिष्य था, भाई लेणा, क्या नाम था, भाई लेणा, उन्होंने अपने गुरु महाराज की इच्छा देखी कि उनको कटोरा चाहिए, उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और सीधा उस गटर के नाले में उतर, उनका पूरा शरीर विष्ठा से भर गया, कचरे कीचड़ से भर गया, लेकिन मुंह पे जरा कोई तनाव नहीं बल्कि प्रसन्नता कि कैसे भी मुझे मेरे गुरु की सेवा का मौका तो मिला। एक शिष्य सदैव तैयार रहता, जैसे सैनिक तैयार रहता है, ऐसे शिष्य तैयार रहता है सेवा के लिए 24 घंटे। सेवक सेवा में रहे, सेवा करे दिन रात 24 घंटे। कहत कबीर ता दास पर काल करे नहीं घात। कटोरा निकाला, निर्मल जल में उस कटोरे को धोया, साफ किया, साफ सुथरा पवित्र करने के बाद अपने गुरु के चरणों में दिया। गुरु महाराज ने उस भाव को देख लिया और कहने लगे, पंजाबी में कहने लगे कि तेरा नाम है लेना और सानू कुछ है तेनू देना, कुछ है तेनू देना, मतलब तुझे कुछ मुझे अब देना है। ये कह के उनको गले से लगाया। जरा ध्यान रखना, वो पूरे कीचड़ से भरे हुए हैं। कीचड़ से भरे हुए व्यक्ति को दो ही लोग गले से लगाते हैं। संसारिक कीचड़ हो तो माँ गले से लगाती है, और संसार का पापों का कीचड़ हो तो सदगुरु गले से लगाते हैं, और तीसरा गले लगाने वाला कोई नहीं है। ये तो एक निर्मल आत्मा, निर्मल ज्योत भाई लेना, एक पवित्र प्रारब्ध से चले आ रहे सेवा का भाव अपने गुरुदेव के सीने से लगे और कहा, आज से तुम्हारा नाम अंगत, अंग दे दिया, जिसको अपना रूप दे दिया। और दूसरी पातशाही यहां से चलती है। तो सेवा, सिमरन और साधना, हमारी साधना को बढ़ाने वाला हमारा सिमरन, और उस साधना को बचाने वाला हमारी सेवा। इसका संकल्प करो, ना हमारा सिमरन कभी खंडित हो, ना ही हमारी सेवा कभी खंडित हो। इस भाव को लेके चलना, ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। नित्य भजो हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।